आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जनगण, श्रोतागण, हम कल भगवान सुदामन देव की तीन पाद भूमि की भिक्षा और बलि महाराज की दान देने के लिए प्रतिश्रुति और उसके साथ साथ बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य का इस दान में बाधा उत्पन्न करना, क्या बलि महाराज को यह दान देने के लिए मना करने के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वस्तुतः शुक्राचार्य जो बलि महाराज के कुल गुरु थे और जिनकी कृपा से बलि महाराज विश्वजीत यज्ञ अनुष्ठान करने के उपरांत स्वर्ग राज्य को अधिकार करने में समर्थ हुए, वही शुक्राचार्य अब बलि महाराज को भगवान वामन देव के आविर्भाव के संबंध में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने यह वामन रूप धारण किया है देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। और शुक्राचार्य यह भी सतर्क कर रहे हैं कि यह वामन देव जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, ये तुमसे तुम्हारा राज्य छीन कर इंद्र को देवताओं को प्रदान करेंगे, अतः तुम इनको दान देने के लिए तीन पाद भूमि कभी भी प्रतिज्ञा नहीं करना। तो यहां पर शुक्राचार्य जो गुरु का कार्य कर रहे हैं और भृगुवंशीय ब्राह्मण है, ये उनके कर्तव्य के विपरीत आचरण कर रहे हैं। वस्तुतः जो ब्राह्मण होता है ये केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो कर्म से ब्राह्मण होता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग था, मैंने चार वर्णों की सृष्टि गुण और कर्मों के अनुसार की। भगवान यहां जन्म की बात नहीं कहते हैं, यद्यपि कोई किसी कुल में जन्म होने से उस वर्ण के अनुकूल कर्तव्य का संपादन करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, किंतु यदि कोई उसके जन्म का दुरुपयोग करता है तब वह अपने कर्तव्य संपादन में सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है तो उसको एक अनुकूल परिवेश प्राप्त होता है, अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है ब्राह्मणों का कर्म करने के लिए, किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के उपरांत यदि व्यक्ति ब्राह्मणों का कर्म नहीं करता है, अन्य वर्णों का कर्म करता है, क्षत्रिय वैश्य या शूद्रों का कर्म करता है, तो वो ब्राह्मण पदवाच्य नहीं है। उस व्यक्ति को शास्त्रों में ब्रह्म बंधु कहा गया है, जो ब्राह्मण का बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। शास्त्रों में बताया है कि जन्मनाम जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विजः, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, किंतु संस्कार से व्यक्ति द्विज होता है, द्विजत्व को प्राप्त करता है। द्विज अर्थात द्वितीय बार उसका जन्म होता है संस्कार से, जात संस्कार, उपनयन संस्कार, इससे दोबारा जन्म होता है, एक शौक्र जन्म और एक सावित्र जन्म, जो पिता के शुक्र से जन्म होता है और एक सावित्र जन्म जो उपदित संस्कार से गुजरना होता है, इसको द्विज कहते हैं। और प्राचीन काल में केवल ब्राह्मण का संस्कार नहीं होता था, यहां तक कि क्षत्रिय और वैश्य का भी संस्कार होता था, ये लोग भी उपदित धारण करते थे। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, ये शास्त्र में बताया गया है कि जब उपदित संस्कार होता है, व्यक्ति या बालक विजस्व को प्राप्त करता है, तो वो वेद पाठ करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो वेद पाठात भवेत विप्र, वेद पाठ करने से उसको विप्र कहा जाता है। ये ब्राह्मणों के स्तर है। प्रथम स्तर है द्विज, जब वो वेद पाठों में प्रवीण होता है और षट कर्मों में प्रवीण होता है, उसको विप्र कहा जाता है। वेद पाठक भवत विप्र, ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण। और जब व्यक्ति ब्रह्म को जानेगा, भगवान को जानेगा, तब वो ब्राह्मण पदस्थ होगा। यदि वो भगवान को नहीं जानता है, भगवान विष्णु की उपासना नहीं करता है, या भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो वो ब्राह्मण पदस्थ नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि विप्र जो होता है, यह षट कर्म में निपुण होता है। पठन पाठन, यजन याजन, दान और प्रतिग्रहण, ये विप्रों के छह कर्म है। तो ये षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, यदि विप्र मंत्र तंत्रों में, वेदों के मंत्रों में विशारद हैं, पंडित हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है और इस प्रकार के छह कर्मों को संपादन कर सकता है, षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव और गुरु नस्ता। किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो वो गुरु होने योग्य नहीं है। तो ब्राह्मणों को या विप्रों को साधारणतः गुरु के रूप में लोग मानते हैं, कुल गुरु के रूप में। किंतु वो यदि भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो गुरु होने के योग्य भी नहीं है। तो सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नस्ता स्वपत वैष्णव स्वपत गुरु। किंतु यदि कोई चंडाल के कुल में जन्म हुआ हो, किंतु संस्कार से तो वैष्णव है, कर्मों से वैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त है, तो वो गुरु होने के योग्य है, गुरु पदवाद से। ये पद्म पुराण की उक्ति है, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है। तो इसलिए ये आशा की जाती है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो विप्र से भी उच्च स्तर में है, भगवान को जानते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है और वे गुरु पदवाद से है, यदि भगवान विष्णु के भक्त है। यदि भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, तो वो गुरु के योग्य भी नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि शुक्राचार्य ये ब्राह्मण भृगुवंशीय ब्राह्मण थे, ये जानते थे कि भगवान विष्णु आए हुए हैं, उनके सम्मुख भगवान विष्णु खड़े हैं ब्राह्मण देव के रूप में, किंतु ये विष्णु भक्त नहीं थे। शुक्राचार्य कि केवल बलि महाराज के कुल पुरोहित ही बनकर रह गए, तो कुल पुरोहित लोग सब धर्म अनुष्ठान कराते हैं और अपना दक्षिणा प्राप्त करते हैं, किंतु ये नहीं देखते हैं कि उनका शिष्य कहीं भगवत भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, भक्ति मार्ग में उन्नति प्राप्त करें और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करें, वो मुक्ति को प्राप्त करें, इसके लिए ये प्रयासरत नहीं होते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु नसस्या सदन नसस्या पिता नसस्या जननी नसस्या, नामोपेत यह समोपेत वृत्तम। वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वधन स्वधन नहीं है, वो पिता माता पितामाता नहीं है। यदि वो अपने पुत्र या शिष्य को मृत्यु से नहीं बचा सकते तो पिता माता गुरु स्वधन इनके संग ये कर्तव्य होता है कि उनके पर जो आश्रित हैं उनको किस प्रकार इस मृत्यु से मुक्त करें उसके लिए वो प्रयास करें। तो यहाँ पर जो कुल गुरु होते हैं ये केवल अपनी दक्षिणा से संतुष्ट रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उनका शिष्य ये भगवत भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहा है या नहीं, ये मृत्यु के पश्चात भगवान को प्राप्त होगा या नहीं, इसके संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं देते। अतः ये लोग गुरु पदवाच्य नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि जो इस प्रकार के गुरु होते हैं केवल अपनी दक्षिणा से संतुष्ट किंतु शिष्य को मुक्ति प्रदान करने में असमर्थ, या यदि गुरु अपना क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है इसके संबंध में नहीं जानता है, अथवा वो विपदगामी हो जाता है, कुपथ में चला जाता है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, तो ऐसे गुरुओं को तुरंत त्याग देना चाहिए और ऐसे वैष्णव गुरु को ग्रहण करना चाहिए जो व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मार्ग में ले जाए या दिग्दर्शन प्रदान करें। इस महाभारत के उद्देश्य पर्व में इसलिए कहा गया है गुरु त्यागने के लिए कि गुरु अपि अवलिप्तस्य कर्जा कर्ज नदानतः। जो गुरु कार्य क्या है अकार्य क्या है कर्तव्य क्या है असर्तव्य क्या है नहीं जानता है और उत्पत्त प्रतिबंधस्य परित्यागो विधीयते और वो उत्पत्तगामी हो जाता है अर्थात कुपथगामी हो जाता है, पाप कर्म लिप्त रहता है, पाप कर्म करता है, तो वो गुरु त्यजने योग्य है, त्याग करने योग्य है। और व्यक्ति को वैष्णव गुरु सद्गुरु को ग्रहण करना चाहिए जीवन। तो यहां पर शुक्राचार्य ने जो उपदेश प्रदान किया बलि महाराज को ये सर्वथा गुरु के कर्तव्य के विपरीत था कि बलि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे यज्ञ स्थल पर स्वयं यज्ञ भी कर देना चाहिए क्योंकि ये सब उन्हीं का, हमारा कुछ नहीं है। हमारा जब जन्म हुआ था तो हम खाली हाथ आए थे, कुछ लेकर नहीं आए, और जब हमारी मृत्यु होगी हम खाली हाथ ही रहेंगे, ये धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगा किंतु हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा। यदि हम भगवान की भक्ति में संलग्न हुए हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म किए हैं वो हमारे साथ जाएगा, यदि हम कोई पाप कर्म किए हैं वो भी साथ जाएगा और उसके अनुसार हमें नरक या किसी ऐसे योनि की प्राप्ति होगी जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो। तो यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि इस मनुष्य जन्म में वो किस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होता है। केवल मनुष्य ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है, पशु पक्षी उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने पशु पक्षी नहीं जान सकते। पशु पक्षियों की प्रवृत्ति केवल आहार निद्रा भय मैथुन में। यदि कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए अपना सारा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में व्यतीत कर लेता है तो वो पशु के समान जीवन व्यतीत करता है और इसके परिणाम स्वरूप वो नर्क के कष्ट भोग करता है, नीच जनों को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। यदि वो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को जो बार बार प्राप्त नहीं होता है, चरास लाख जीव जन्म में भ्रमण करने के उपरांत भी मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग व्यक्ति नहीं करता है तो पुनः उसको चरास लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। अतः ये मनुष्य जन्म दुर्लभ इंद्र अर्थधर है, ये अर्थपूर्ण है, इसको ऐसे नष्ट करना नहीं चाहिए। केवल आहार निद्रा भय मैथुन में इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट करना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए बलि महाराज को यहाँ पर शुक्राचार्य जो उपदेश दे रहे हैं, ये गुरु के कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं शुक्राचार्य, वो ठीक विपरीत उपदेश दे रहे हैं। जबकि उनको कहना चाहिए था कि बलि तुम सर्वस्व दान कर दो, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है, भगवान तुम्हारे द्वार पर आए हैं, भगवान को क्या कमी है। जो स्वयं श्री निकेतन है, लक्ष्मी जिनके दक्ष स्थल पर निवास करती है, तो समग्र अश्वजों के स्वामी हैं और सब कुछ उन्हीं से ही आता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्वा सर्वंत वर्तते, तो मैं सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ आता है, जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ मुझसे ही आता है। तो वही आदि पुरुष भगवान वो आए हैं बलि महाराज से कुछ याचना करने के लिए, तो ये इसके पीछे अवश्य कुछ रहस्य है। भगवान जो सारे संसार के स्वामी हैं, उनको मानने की क्या आवश्यकता है। किंतु यदि वो आए हैं और यदि कोई भगवान को कुछ दान करता है, तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाता है, उसका कुछ नष्ट नहीं हो जाता है, वो वस्तुतः भाग्यवान बन जाता है। जिस प्रकार लोग गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए और गंगा नदी का जल लेकर गंगा नदी को अर्पित करते हैं, अंजलि में जल लेकर गंगा नदी को ही अर्पित करते हैं, इसमें जब कोई गंगा नदी का जल अंजलि में ग्रहण करता है तो गंगा नदी का जल घट नहीं जाता है, और जब अर्पित करता है उसका जल बढ़ भी नहीं जाता। तो गंगा जल में गंगा की पूजा करते हैं और गंगा के भक्त कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सब जो कुछ भी दिया हुआ है सब भगवान का दिया हुआ है। हम जो जिसको अपना मानते हैं, ये हमारा अपना नहीं है, यहाँ तक हमारा शरीर भी अपना नहीं है, हमारा मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपना नहीं है, अहंकार भी अपना नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको समझता क्या लागे मेरा। तो ये मेरा कुछ नहीं तो भगवान का है। किंतु जब हम श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार कोई पिता बाहर गया हुआ है और जब घर पर आता है अपने बच्चे के लिए कुछ मिठाई लेकर आता है और बच्चे को देता है कि बेटा इसको खा लो, और उस समय बेटा खाने से पहले उस मिठाई से कुछ भाग अगर पिताजी को अर्पित करे तो पिताजी कितना प्रसन्न होते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे दिया खाने के लिए, जबकि बेटे ने खरीदा नहीं है, पिता ने ही लाके दिया है। किंतु वो पुत्र के प्रेम को देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि सब कुछ पिताजी का है। ठीक उसी प्रकार कि सब कुछ भगवान का है, हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उन्हीं का भोग कर रहे हैं, उन्हीं की संपत्ति, उन्हीं का धन, उन्हीं का ऐश्वर्य, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ, उसी को हम भोग कर रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। किंतु प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको सर्वप्रथम भगवान के द्वारा हम अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हम उनके भक्त कहलाते हैं। इसी कार्य के कारण वस्तुतः हम कुछ नहीं दे रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करना ये बहुत सरल है, किंतु ये समझने की बात है। यहां तक कि हम जीवन धारण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, इस वायु की सृष्टि किसने की है, ये वायु कौन प्रदान कर रहा है? वैज्ञानिकों ने सृष्टि की है वायु की, वैज्ञानिक दे रहे हैं। जो लोग मानते हैं भगवान कुछ नहीं है, हम ही भगवान हैं, और हम लोग वैज्ञानिक मानते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सब कुछ आविष्कार करते हैं। तो ये वायु जब इसको भगवान की सृष्टि है, एक पल के लिए भी भगवान इसको बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते। एक पल के लिए वायु सब बंद हो जाता है ना, तो हमारी स्थिति क्या हो? इसलिए भगवान कहते हैं मत भया तो बात की बात हो, सूर्य सतपति मत भया। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ये वायु प्रवाहित होती है, मेरे भय से सूर्य आलोक और उत्ताप प्रदान करते हैं, दहती अग्नि दर्शती इंद्र, और मेरे भय से अग्नि दहन क्रिया करती है, मेरे भय से इंद्र वृष्टि करते हैं, मृत्यु स्तरती मत भया, और मेरे भय से मृत्यु वितरण करती है, काल के रूप में आती है, और लोगों का सर्वस्व अपहरण कर लेती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो लोग मुझे नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं कि कालोस्मि, मैं काल के रूप में उनके पास आता हूं, मृत्यु सर्व हरसता हूं, मैं मृत्यु के रूप में आकर उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं। पर ये भगवान की देन है, संसार में है, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं तो भगवान की देन है, और शुक्रदेव जी को ये कहना चाहिए था बलि महाराज को कि तुम दे दो सो भगवान, इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, इसके विपरीत भगवान तुम्हें महान ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। तो सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं, जो सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या वो अपने भक्तों का पोषण नहीं कर सकते? किंतु शुक्राचार्य ने स्वार्थवश ऐसा उपदेश नहीं दिया बलि महाराज, उन्होंने विपरीत उपदेश दिया कि बलि तुम मत दो, तुम दे दोगे तो ये तुम्हारा सर्वस्व अपहरण कर लेंगे, तुम खाओगे क्या, कहां रहोगे, ये चिंता आ गई शुक्राचार्य। किंतु बलि महाराज जो कि भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि उनके कुल में, उनके वंश में, उनके पितामह प्रहलाद महाराज जो कि भगवान के परम भक्त और जिनके लिए स्वयं भगवान नृसिंहदेव के रूप में अवतरित हुए थे जिनकी रक्षा करने के लिए, तो वही प्रहलाद महाराज बलि महाराज के पितामह हैं, और उनसे बलि महाराज शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, भक्ति की शिक्षा उनको प्राप्त हुई है। अतः बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हुई ये बात को सुनकर शुक्राचार्य से कि स्वयं भगवान ब्राह्मण के रूप में आए हुए। इससे पहले बलि महाराज ये तो ब्राह्मण बालक मानकर उनकी पूजा करते थे, उनको सम्मान प्रदर्शन करते थे, अब उनको यह ज्ञान हो गया कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए बलि महाराज, अब वो क्या करें, उनके गुरु उनको उपदेश दे रहे हैं कि भगवान आए हुए हैं, उनको दान देने की प्रतिज्ञा मत करो, और इधर स्वयं भगवान आए हुए हैं जो यज्ञ पुरुष हैं, जिनके लिए बलि महाराज ये असंगत यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, और जिसके भोक्ता है स्वयं भगवान विष्णु, जो सारे संसार के स्वामी हैं, वो याचक बनकर उनके यज्ञ स्थल पर आए हुए हैं ब्राह्मण के रूप में, तो इस सौभाग्य को अपने हाथ से कैसे वो त्याग देंगे, ये सोचने के लिए बलि महाराज विवश हो गए, और थोड़े समय के लिए मौन रह गए बलि महाराज। अब क्या करें इस धर्म संकट में, यदि शुक्राचार्य की बात नहीं मानते हैं तो गुरु की आज्ञा का अवज्ञा होता है, और यदि दामन देव को दान नहीं देते हैं, गुरु की आज्ञा को मानते हैं, एक महावसर को बलि महाराज खो देंगे। जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं लक्ष्मी भी लड़ाई रहती है, दूसरे लोगों की बात क्या कहना। ब्रह्मा शिव देवता यम ये सारे लोग भगवान की कृपा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। वही भगवान बार बार आए हुए हैं और हम उनको लौटा देंगे बिना कुछ दिए। जो मांगने आए हैं उनकी यातना को हम पूरा नहीं कर सकेंगे, उनको लौटा देंगे, ये बुद्धिमान का काम नहीं। तो बलि महाराज ने यह मन ही मन निश्चय किया कि चाहे ये गुरु की आज्ञा अवज्ञा हो जाए, क्योंकि गुरु उपयुक्त करते तो संपादन नहीं कर रहे। इसलिए शिष्य का धर्म है कि यदि गुरु भगवान से शिष्य को विमुख कराता है तो उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। यदि गुरु कहे कि भगवान विष्णु को दान मत दो, भगवान के मंदिर में दान मत दो, तो ऐसे गुरु गुरु पदवर्त नहीं है। वैष्णवों को दान मत दो, ब्राह्मणों को दान मत दो, तो ये गुरु तेज है। तो बलि महाराज ने इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब इस स्थिति में मुझे अपने गुरु को त्यागना पड़ेगा भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो बलि महाराज ने सुकर दर से कहा कि हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं कि धर्म का पालन यदि व्यक्ति के धर्म अर्थ काम या जीविका में बाधक न बने तो उस धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, यह सत्य है। किंतु आपको यह जानना चाहिए कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं या साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं बलि महाराज प्रहलाद महाराज का पुत्र हूं। जो प्रहलाद महाराज समग्र विश्व में भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान विष्णुदेव के रूप में अवतरित हुए, मैं उनका पौत्र हूं। और एक बार ब्राह्मण को वचन देने के उपरांत मैं कैसे मना कर सकता हूं कि मैं तुम्हें ये दान नहीं दूंगा। मैं कैसे असत्य भाषण कर सकता हूं। यदि कोई साधारण व्यक्ति असत्य बोल देता है कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, किंतु कोई बड़े व्यक्ति कभी असत्य भाषण कर लेता है तो सारे लोग उसकी ओर देखते हैं कि उसने झूठ कहा, ये असत्य भाषण किया है, सब लोग उसका उदाहरण देते हैं। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनाः, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करेगा इतर जन उसी प्रकार उसका अनुसरण करें। अतः बलि महाराज का यह कहना सर्वथा यथार्थ है कि वो इस प्रकार नहीं कर सकते। वचन देकर उन्होंने कहा था कि दान देंगे, किंतु दान देने के बाद कहा कर फिर उससे अपने वचन को नहीं निभाना, ये बहुत बड़ा असत्य है, ये बहुत बड़ी वंचना है। और एक ब्राह्मण को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। ये भगवान चाहे ये भगवान भगवान हो किंतु ब्राह्मण के रूप में आए हैं मेरे द्वार पर, तो ये ब्राह्मण की वंचना मैं नहीं कर सकता। कह रहे हैं बलि महाराज कि वस्तुतः वसुंधरा या पृथ्वी उसको सर्वसहा कहा जाता है। पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, यहां तक कि पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े सागर हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर लोग कितने प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, भूमि का खोदन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, भूमि से तरह तरह के आवश्यक वस्तु निकालते हैं, जैसे कोई पत्थर निकालते हैं, सोना निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तरह तरह की वस्तुएं निकालते हैं, भूमि से सबसे उत्पादन करते हैं, तो पृथ्वी कभी प्रतिवाद नहीं करती। किंतु पृथ्वी ये सब कुछ सहन करती है, इसलिए वो सर्वसहा। इस प्रकार माता शिशुओं का सब कुछ सहन करती है, इसी प्रकार पृथ्वी प्राणियों का सब कुछ सहन करती है, किंतु एक चीज को सहन नहीं कर सकती पृथ्वी माता। जो लोग असत्य भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी पर भार सदृश है। तो एक बार पृथ्वी माता ने वसुंधरा में कहा था कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु असत्य बोलने वालों को सहन नहीं कर सकती, उनका भार से मैं दबी जा रही हूँ। तो जो लोग संसार में असत्य भाषण करते हैं, बहुत बड़े पापी हैं, और उनके भार से पृथ्वी दब जाती है, भाराक्रांत हो जाती है। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर एक भार बनना नहीं चाहता असत्य भाषण कर। एक ब्राह्मण को वचन देकर उस वचन से फिर मैं उतर जाऊं या वचन का पालन ना करूं, ये मेरे द्वारा संभव नहीं हो। मैं पृथ्वी पर एक भार बनना नहीं चाहता। तो बलि महाराज कह रहे हैं ना हम विभेद निरया, यदि मेरे वचन का पालन करते हुए मुझे नर्क में जाना पड़े तो उस नर्क में जाने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। मैं नर्क के लिए भयभीत नहीं हूं, नर्क का कष्ट भोगने के लिए मैं भयभीत नहीं हूं। अथवा न अधन्य, आप कह रहे हैं कि मैं यदि चिंता भूमि वामन देव को प्रदान करूं तो वामन देव मेरा समस्त ऐश्वर्य का अपहरण कर ले जाएंगे, मैं धनहीन हो जाऊंगा, इसके लिए भी मैं भयभीत नहीं हूं। साधारणतः लोग भयभीत होते हैं नर्क जाने में, नर्क का कष्ट भोग करने में, या निर्धन हो जाने में कि मेरा कैसे भरण पोषण होगा, मेरा परिवार का कैसे भरण पोषण होगा यदि मैं निर्धन हो जाऊं। तो बलिमान सारा इसके लिए मैं भयभीत नहीं हूं, न अधन्य न निरया, असुख अन्नवा। और यदि दुख का सागर भी मेरे ऊपर टूट पड़े, क्या दुख के सागर में मैं पतित हो जाऊं, फिर भी मैं इन दुखों के लिए भयभीत नहीं हूं। चाहे कितने भी दुख आए, मैं निर्धन बन जाऊं, नर्क का कष्ट भोग करो, क्या तरह तरह के दुख भोग करो, उसके लिए मैं भयभीत नहीं, मैं प्रस्तुत हूं उसको भोग करने। पुनः कह रहे हैं न स्थानम चरणा, मैं अपने स्थान से यदि पतित भी हो जाऊं फिर भी मुझे भय नहीं, अर्थात मैं आज समग्र विश्व का अधीश्वर हूं, त्रिलोक का अधीश्वर हूं, और भगवान यदि मेरा सब कुछ ले जाएंगे मैं आज राजा नहीं रहूंगा, मैं अपने स्थान से च्युत हो जाऊंगा, तथापि मैं भयभीत नहीं हूं। उसके पुनः कह रहे हैं मृत्यु, यदि मृत्यु भी मेरे सामने आ जाए, आज मुझे इसके लिए मरना भी पड़े, फिर भी मैं मृत्यु के लिए भी भयभीत नहीं, तो फिर किसके लिए भयभीत है बलि महाराज? कह रहे हैं जथा वृक्ष चलम होना, कि जिस प्रकार किसी वृक्ष या ब्राह्मण को ठगना, उसकी वंचना करना, इसके लिए मैं अधिक भयभीत हूं। मैं किसी ब्राह्मण की वंचना करना नहीं चाहता, क्योंकि ब्राह्मण और गौ ये भगवान के अंश है, भगवान की कृपा पात्र है। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने से, गौओं को प्रसन्न करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को ठगने से, वैष्णवों को ठगने से विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण की वंदना करना नहीं चाहता, इसके लिए मैं भयभीत हूं, और किसी के लिए मैं भयभीत नहीं हूं। तो इस प्रकार बलि महाराज और एक तर्क देते हैं शुक्राचार्य, कहते हैं कि वस्तुतः संसार में लोग धन कमाने के लिए अपना सारा जीवन कठोर परिश्रम करते हैं, धन कमाना ही उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है, जिससे कि वो इंद्रिय तृप्ति में लग सकते। किंतु जब मृत्यु आती है उनको अपने धन का त्याग करना पड़ता है, सारा जीवन कठोर परिश्रम करके जिस धन का उपार्जन किया है मृत्यु के समय वो धन साथ में नहीं जाएगा। यहां तक कि समस्त धन खर्च करने पर भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता, और उस समय मृत्यु के समय अपने धन को उसको त्याग करना पड़ेगा। तो बलि महाराज कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय ये धन को त्यागना पड़ेगा, त्यागने के लिए व्यक्ति बाध्य है, तो क्यों मृत्यु के पहले इस धन को हम भगवान विष्णु की सेवा में लगा करके इसको त्याग न दें। धन हमें त्यागने से पहले हम भगवान की सेवा में इस धन को त्याग दें, क्यों न त्याग दें? ये बुद्धिमान का कार्य है। भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, दशों की सेवा में हमें धन को क्यों न हो गया? ये एक तर्क दे रहे हैं बलि महाराज। पुनः कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं इतिहास से कि वस्तुतः ये धन क्या है, धन त्यागने के लिए व्यक्ति क्यों डरता है? ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो धन क्या उनके सामने, यहां तक कि अपने प्राण को भी त्यागने के लिए वो प्रस्तुत हो रहे हैं, दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राण को भी वो त्याग देते हैं। इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व काल में दधीचि मुनि हुए थे जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए उन्होंने अपने प्राण को भी त्याग दिया, क्योंकि देवता लोग वृत्तासुर से युद्ध करना चाहते थे और वृत्तासुर को मारने के लिए दधीचि की अस्थि की आवश्यकता थी। तो देवता लोग आकर देवताओं ने प्रार्थना की दधीचि से कि आपके अस्थि से ही हम वज्र बनाकर वृत्तासुर को केवल मार सकते हैं। तो दधीचि मुनि ने कहा ठीक है, यदि इससे देवताओं का, जन समाज का मंगल होगा तो मैं अपना प्राण देने के लिए प्रस्तुत हूं। तो यदि व्यक्ति दूसरों के उपकार के लिए प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है तो फिर दूसरों के उपकार के लिए धन त्याग करना कौन सी बड़ी बात है? पुनः कहते हैं महाराज सिद्धि, उन्होंने भी ऐसा ही किया। एक कपोत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर से मांस काट करके दिया। एक बार सिद्धि महाराज ये बड़े दानशील थे, दानी थे और धर्मनिष्ठ थे, तो उनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं धर्म और अग्नि ये दोनों आए एक कपोत और बांस के रूप में सिद्धि महाराज की परीक्षा लेने के लिए। तो कपोत उड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे बाघ पक्षी उसको मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहा था। तो इस प्रकार कपट उड़ते हुए आकर सिद्धि महाराज बैठे हुए थे तो उनकी गोद में गिर गया और बाद आकर वहां पर उपस्थित हुआ और बाद में कहा कि महाराज ये मेरा खाद्य है कपोर, तो आप मुझे इसको वापस दे दीजिए, मैं इसको खाऊंगा, ये मेरा खाद्य है। तो सिद्धि महाराज ने कहा कि यद्यपि वो तुम्हारा खाद्य है किंतु मेरी शरण में आया ये कपोर, और क्षत्रिय का धर्म है शरणागत की रक्षा करना, कोई शरण में आए तो उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। तो मैं इसको कैसे तुम्हें दे सकता हूं जिससे कि तुम इसको खा लो, इसकी मृत्यु हो जाए, इससे बदले तुम जितना भी मांस चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु मैं इसको तुम्हें नहीं दे सकता। तो वाद ने कहा कि यदि आप इसको देना नहीं चाहते हैं मैं और किसी मांस से संतुष्ट नहीं होगा, यदि आप अपने शरीर से मांस काटकर मुझे देंगे तब मैं उसको ग्रहण कर सकता हूं, किंतु इस कपट का वजन जितना होगा उस वजन का मांस मुझे चाहिए आपके शरीर से। तो श्री महाराज तुरंत राजी हो गए। तो एक मापदंड में एक तरफ रखा गया कपोत को और दूसरी तरफ महाराज सिद्धि अपने शरीर से मांस काट करके रख रहे हैं, तो जितना मांस रख रहे हैं ये कपोत का वजन बढ़ता जा रहा, तो मांस कपोत के वजन का समकक्ष नहीं हो पा रहा और बलि महाराज अपने शरीर से मांस काटते जा रहे हैं। इस प्रकार बलि महाराज सिद्धि महाराज ने सिद्धि महाराज अपने शरीर से मांस काटते जा रहे हैं, जब देखा उन्होंने देखा कि फिर भी कपट के वजन के समकक्ष मांस को नहीं दे पा रहे हैं, अंत में वो स्वयं जाकर उसमें बैठ गए, उसको पाप धर्म का जो कला था उसी में बैठ गए, बोले कि हम स्वयं ही बैठ जाए ये शरीर से मांस को काटने से ये इसका समकक्ष या तुल्य नहीं होता है, तो स्वयं बैठ गए अर्थात अपना प्राण देने के लिए वो प्रस्तुत हो गए। तो जब इसको बात पक्ष ने देखा जो कि स्वयं धर्म थे और कपट स्वयं अग्नि थे, तो दोनों ने अपना स्वरूप ग्रहण किया और वो बहुत संतुष्ट हुए श्री महाराज के उस दानशीलता के कारण। तो वो लोग आए थे इनके दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए, तो श्री महाराज इसमें सफल हुए इस परीक्षा में, तो बहुत संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार महाराज बलि श्री महाराज का उदाहरण दे रहे हैं, दधीच का उदाहरण दे रहे हैं कि यदि ये लोग अपना प्राण दे सकते हैं दूसरों के उपकार के लिए, तो मैं अपना धन भगवान विष्णु में प्रदान नहीं कर सकता। तो यह कहते हुए बलि महाराज शुक्राचार्य को ये तर्क दे रहे हैं और दूसरा भी तर्क दे रहे हैं, कारण कि पूर्व काल में बहुत सारे दैत्य हुए हैं, बहुत सारे दैत्य राज हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे धन ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं, जो जिन्होंने प्राप्त किए थे, और वे लोग अपना प्राण तो अब त्याग चुके हैं क्योंकि काल ने उनका ऐश्वर्य अपहरण कर लिया है, तो मृत्यु के पश्चात उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, किंतु उन लोगों ने अपने कर्मों से अब भी उनका यश सारे जगत में प्रसिद्ध है या उनका यश सारे जगत में परिव्याप्त है। तो व्यक्ति का धन उसके साथ स्थायी रूप से नहीं रहता है, तो मृत्यु के पश्चात धन चला जाता है, किंतु उसका यश बना रहता है। यदि उन्होंने अच्छा कर्म किया है अपने जीवन में तो उसका यश बना रहता है। इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि यह धन के लिए अपने यश को त्याग देना ये बुद्धिमान का कार्य नहीं है। यदि मैं धन के लिए अपने वतन को वापस ले लूं तो सारे संसार में मेरा अपयश फैल जाएगा कि देखो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के एक पौत्र हुए थे जिन्होंने ब्राह्मण को वतन देकर बाद में उसको वापस ले तो सारे संसार में मेरा अपयश सदा के लिए परिवर्तित हो। तो मैं ये अपयश नहीं चाहता, ये धर्म के लिए थोड़े से धर्म के लिए अशुद्ध के लिए मैं ये अपयश नहीं चाहता। पुनः गली महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे योद्धा हुए हैं जो अपने प्राण त्यागने के लिए युद्ध क्षेत्र में वो प्रस्तुत हो जाते हैं, प्राण का करने का अवसर युद्ध क्षेत्र में उनको प्राप्त होता रहता है, किंतु कितने लोगों को अपने जहां कोई ब्राह्मण या स्वयं भगवान यहां पर आए हुए हैं उनके लिए धन का करने का अवसर कितने लोगों को प्राप्त होता है। ये बड़े बड़े योद्धा लोग प्राण का करने के अवसर प्राप्त होते हैं, युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग भी देते हैं, उसके लिए प्रस्तुत है, किंतु मैं थोड़ा सा धन को क्या करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो पा या मुझे कैसा उपदेश दे रहा है। यह अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। किसी तीर्थस्थान में हम जाएं और कोई ब्राह्मण किसी धन के लिए याचना करे और व्यक्ति उसको न दे तो तीर्थस्थान में जाने का कोई अर्थ नहीं। और यहां पर स्वयं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं मांगने के लिए और उनको मैं न दूं ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। अतः धन हमें त्यागने से पहले हम धन को त्याग दें ये बुद्धिमान का कार्य। तो यहां पर बलि महाराज और एक तर्क दे रहे हैं, सुखदर से कह रहे हैं मनस्कारुणिगस्त शोभनम जगत कामोपनयन दुर्गति। बहुत सारे लोग इस संसार में जिनके पास धन अधिक हो तो ये लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, इस धन से ये लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो इस प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार पाप कर्म में लिप्त रहकर धन को नष्ट कर दे, धन का दुरुपयोग कर दे और उससे दरिद्र हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। इन्होंने पाप कर्म में धन का व्यय किया है और गरीब हो गए, दुर्गति को प्राप्त हो गया, तो उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी को दान देकर किसी के उपकार के लिए धन का व्यय करके गरीब हो जाता है तो सारे संसार में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने दूसरों के उपचार के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, गरीब बन गया, दरिद्र हो गया दूसरों के लिए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर कुतः पुण्य ब्रह्म विदांश भवादृशम तथो वटो अस्त भवान अंश। तो भले महाराज कह रहे हैं तो फिर मेरे लिए एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि स्वयं ब्राह्मण बालक के वेश में भगवान विष्णु मेरे द्वार पर उपस्थित है। अतः यदि भगवान विष्णु को यह दान देकर मैं निर्धन बन जाऊं, दरिद्र बन जाऊं, फिर भी मैं स्त्री राजी हूं, मैं निर्धन बनने के लिए इसको स्वीकार करता हूं, मैं अवश्य इस ब्राह्मण बालक भगवान विष्णु को यह दान अवश्य प्रदान करूंगा। तो बाली महाराज अपने निश्चय में दृढ़ है, ये शुक्राचार्य की बातों को नहीं सुन रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इस अवसर पर क्या कर्तव्य है। स्वयं भगवान को प्राप्त हुए हैं बाली महाराज, इस अवसर को वो खोना नहीं चाहते। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मुनि ऋषिगण हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, साधन का अनुष्ठान करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो वही भगवान आज बलि महाराज के द्वार पर आए हैं उन पर कृपा करने के लिए। तो बलि महाराज इस अवसर को कैसे खो सकते हैं? बलि महाराज इतना मूर्ख नहीं है। अतः बलि महाराज निश्चय करते हैं कि मैं अवश्य इस ब्रह्मचर्य ब्राह्मण को अवश्य दान प्रदान करूं। और एक तर्क जो देते हैं बलि महाराज शुक्राचार्य को, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण गण सदा सर्वदा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके यज्ञ अनुष्ठान का भोक्ता कौन है, क्योंकि भगवान बार बार ये कह चुके हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वभूत महेश्वरं श्रुतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां सन्ति वृक्षते। तो भगवान यज्ञेश हैं, यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं। तो जब जहां कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो वहां भगवान विष्णु को आह्वान किया जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए आहुति दी जाती है। भगवान विष्णु ही यज्ञ के भोक्ता हैं। तो बलि महाराज प्रश्न कर रहे हैं शुक्राचार्य को कि आप ब्राह्मण हैं, भृगुवंश ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में आप उत्पन्न हुए हैं, और अब मेरे लिए आप असुरत यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो इस यज्ञ में आप किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में आहुति देते हैं, किंतु आप मुझे कह रहे हैं जिस भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि वो विष्णु मेरे पास आए हैं मांगने के लिए, मैं उनको ना दूं, उनको प्रसन्न ना करूं, तो आपके यज्ञ अनुष्ठान का क्या फल है? आज यज्ञ का फल स्वयं यहां पर आविर्भूत हुए हैं, स्वयं भगवान यहां प्रकट हुए हैं, यही यज्ञ का फल है। इस फल को प्राप्त करने के उपरांत आप मुझे यह शिक्षा दे रहे हैं कि मैं इस भगवान की पूजा न करूं, उनको दान न दूं, तो यह आपके लिए तो विरोधाभास है। आप एक कर्म कर रहे हैं और उसका विपरीत मुझे उपदेश दे रहे हैं। जो वस्तुतः गुरु हैं, आचार्य हैं, वो जो कर्म करेगा, जो उपदेश देगा, वो अपने जीवन में पालन करेगा। ऐसा नहीं है तो अपने जीवन में पालन नहीं करता हो और दूसरों को उपदेश देता है, जैसे राजनीतिक नेतागण करते हैं या आजकल बहुत सारे प्रवर्तक भी ऐसे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लोगों को बताने के लिए, उपदेश देने के लिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ पालन नहीं करते, हर तरह के कुकर्म में लिप्त रहते। तो ऐसे गुरु की क्या आवश्यकता? जो आचार्य है, जो अपने आचरण में इसको दिखाएं, जो उपदेश दूसरों को दें, अपने आचरण में पालन करें, वो वस्तु का आचार्य है, गुरु है। ये गुरु नहीं है जैसे आजकल के स्कूल के शिक्षक लोग जैसे बताते हैं बच्चों को, जब से हम जो करते हैं उसको नहीं करना, हम जो शिक्षा देते हैं उसको करना। ये कैसे संभव है? अगर शिक्षक सिगरेट पिएंगे और बच्चों कहेंगे बच्चे सिगरेट मत पीना, ये ठीक नहीं है, तो बच्चे कभी भी नहीं माने। ये तो विरोधाभास है। जब कोई शिक्षक हो, पिता हो, कोई कार्य करता हो और बच्चों को कहेगा तुम इसको मत करो, तो बच्चा नहीं माने, बोलेंगे आप कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो किसी को उपदेश देने से पहले हमें स्वयं उस उपदेश का पालन करना चाहिए, तब हमारे उपदेशों का कुछ प्रभाव पड़ सकता है।